الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال إن تلك ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل إلى آخره، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. उधर हीटर चालू है लेडीज में, ठीक है, बहुत ठंडी सर्दी है जी. मेरे दोस्तों और पर्दा नशीन, मेरी मोहतरमा माएँ और बहनें, बेटियां, लास्ट वीक एक रिवायत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाहु ताला अन्हु की मैं आपके सामने बयान कर रहा था, और मैंने अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाहु ताला अन्हुमा की ज़िंदगी को बयान किया था कि बहुत सखावत वाली ज़िंदगी थी और इत्तेबाए सुन्नत वाली. वो खुद इस हदीस को नकल करते हैं, इसमें गार का वाकया नकल किया है, तीन आदमियों का वाकया इस हदीस में नकल किया है. उससे हमें क्या सबक मिलता है वो पहले देखते हैं. इंतलक सलासत नफर मिम्मन कान कबलकुम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पिछली कौम के अंदर में तीन आदमी अपने घर वालों के लिए रोजी तलाश करने के लिए सफर कर रहे थे. जैसे आमतौर पर बिजनेसमैन लोग एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हैं, ये तीनों आदमी जॉब और बिजनेस के लिए सफर कर रहे थे उस जमाने में चलती हुई. अब रास्ते में चलते चलते बहुत ही सख्त हवा और तूफान आ गया, चलना बहुत मुश्किल था. अब बारिश भी इतनी थी तो उन्होंने सोचा कि यहां एक पहाड़ है और पहाड़ के अंदर में गार है, केव है, हम उसके अंदर में जब तक बारिश बंद हो जाए छुप जाते हैं ताकि बारिश से, हवा से, तूफान से हमारी हिफाजत हो जाए. तो पहाड़ के गार के अंदर में तीनों के तीनों चले गए. अब हवा इतनी थी, इतनी ज्यादा थी कि हवा और तूफान की वजह से एक बहुत बड़ा पत्थर, रॉक जिसको कहते हैं, कहीं आदमी नहीं उठा सकते इसको, वो लुढ़कता हुआ गिरता हुआ उस गार के मुंह पर आके अटक गया. अब ये लोग अंदर में बंद हो गए इसलिए कि वो न बाहर कोई आदमी है जो इसको हटाए, न अंदर वाले इसको हटा सकते हैं, तो बहुत मुश्किल हो गया. आने जाने का रास्ता बंद हो गया. अब वो आपस में कहने लगे अफल असरु वकाल हजरु वला यालम बिमकान इल्लल्लाह, हमारे कदमों के निशानात मिट चुके हैं इसलिए कि हवा और तूफान बारिश है तो किसी को नहीं पता चलेगा अंदर में कोई है, और मुंह भी बंद हो चुका गार का, गार का दरवाजा बंद हो चुका है, और सख्त हवा और सख्त बारिश की वजह से घर के अंदर में आने जाने और कोई आएगा भी नहीं. अब क्या होगा? अब ये तीन आदमी हैं, भूखे प्यासे मर जाएंगे अंदर में. तो फकालू, उन लोगों ने कहा हम क्या करें, अब कोई रास्ता बताओ हम क्या करें. इन्नहु ला युंजीकुम मिन हाजी सखरा, तो उन्होंने आपस में मशविरा किया, तो उसमें से एक ने कहा कि देखो, हम में से हर एक आदमी बहुत मुश्किल से बच सकेगा, यही मर जाएंगे, लेकिन अगर जिंदगी में कदउल्लाह बिसालेह आमालिकुम, अगर तुमने कोई अच्छा और नेक काम किया हो जिंदगी में, तो अपने उस नेक काम का वास्ता अल्लाह को दो। कोई भी नेक काम, चाहे रास्ते से पत्थर ही क्यों ना था, कांटा ही क्यों ना था, कोई भी नेक काम तुमने सिर्फ अल्लाह के लिए किया है और किसी को दिखाने के लिए नहीं है, उस नेक काम का वास्ता देते हैं सालेह आमालिकुम, तुम्हारे आमाल में से कोई अच्छे काम। अगर अल्लाह को वो अमल पसंद आ गया हो जो हमने सिर्फ अल्लाह के लिए किया था, तो उसके वसीले से, उस नेकी के वसीले से अल्लाह ताला हमारी इस मुसीबत को दूर कर देगा, यानी पत्थर और इतनी बड़ी चट्टान को वो हटा देगा। इसलिए कि बड़े बड़े ऐसे गार होते थे और इतनी बड़ी चट्टान हो उसको कौन हटाए। तो उनमें से एक, तीन में से एक आदमी ने सबसे पहले कहा, दुआ की अल्लाह से, कहा मैं दुआ करता हूं, ए अल्लाह मेरे वालिदैन बहुत बूढ़े थे, माय पेरेंट्स वॉज वेरी वेरी ओल्ड, और मैं जंगल में बकरियां चराने जाता था। जब शाम को जानवर चरा करके ग्रास वगैरह खिला करके जब आता था, तो उसका दूध निकालता था और सबसे पहले मैं अपनी माँ और बाप को पिलाता था, बाद में मेरे बीवी और बच्चे को पिलाता था, और ये मेरी रोजाना की आदत थी पाबंदी से। एक दिन ऐसा हुआ कि ग्रास नहीं मिला, ड्राई था, तो हम चराते 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 बहुत दूर चले गए, तो शाम में घर पहुंचने में बहुत देर लग गई, बहुत ताखीर से हम घर पहुंचे। देखा तो माँ बाप सो गए, शायद अकेली माँ थी, जो भी हो सो गए। तो मैं घर पर आकर सबसे पहले उसका दूध निकालकर अपनी माँ के बिस्तर के पास गया, प्याला लेकर, और मैं माँ के वालिदैन के सराहने के पास, बेड के पास में खड़ा रहा, इंतजार करता रहा जब वो उठेंगे तो मैं उनको दूध पिलाऊंगा। उठाया भी नहीं, नींद भी खराब ना हो, और दूध लेकर खड़ा है। ये सही हदीस है, बुखारी शरीफ है, बिल्कुल सही हदीस। हालांकि मेरे बच्चे भी भूखे थे, जो कि देर से आया तो खाना किसी ने नहीं खाया था, और वो मेरे पैर के पास भूख की वजह से अब्बा अब्बा कर रहे थे, हमें भी पिलाओ हमें भी पिलाओ। लेकिन चूंकि उनके नजदीक, मेरे नजदीक वालिदैन का मकाम, जब मैं अपने बुरे माँ बाप को पहले पिला दूं बाद में बच्चों को पिलाऊं, तो इन्होंने अपने बच्चों को भी दूध नहीं दिया। पूरी रात इसी तरह अपने वालिदैन की बेदारी जाग जाने के इंतजार में वो खड़ा रहा बिस्तर के पास, पूरी रात खड़ा, यहां तक कि फजर का वक्त हो गया, पूरे बच्चे भी सो गए। जब मेरे वालिदैन उठे तो मैंने उनको फौरन दूध पिला दिया। ए अल्लाह, अगर मेरा ये काम तेरी रजा के लिए था, तुझे खुश करने के लिए था, तो पत्थर हटा दे थोड़ा सा, ताकि कम से कम हम आसमान को तो देख सके, हवा तो आए, दिन को तो देखे, वरना अंधेरे में ही मर जाएंगे। जब उस नेक अमल को जिक्र किया और फिर अल्लाह से दुआ मांगी, तो अल्लाह तबारक व ताला ने उसकी दुआ की वजह से, उसके नेक अमल की वसीले की वजह से थोड़ा सा पत्थर ऑटोमेटिकली हट गया, हटा, इतनी बड़ी परेशानी हल्की कर दी। क्योंकि माँ तो माँ बाप के साथ मोहब्बत प्यार हम कहां जानते हैं, वो आजकल के बच्चे क्या कहते हैं, यू नो ऑल माइंड, क्या कहते हैं, ऑल माइंड है तुम्हारा, अभी तो टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई है ना, तुम्हें क्या आता, तुम अनपढ़ हो, जाहिल हो, यू डोंट अंडरस्टैंड, यू लाइक दिस, यू लाइक दिस, यू लाइक दिस, अपने आप को क्लेवर समझते हैं, माँ से कहता यू डोंट नो नथिंग, वो कुछ नहीं आता था तभी तो तू दुनिया में आया। तो एक अजीब आजकल तमाशा है, मां बाप की नाफरमानी को कोई आदमी गुनाह ही नहीं समझता। चलो नाफरमानी छोड़, मां बाप के सामने जोर से बोलने को कोई गुनाह ही नहीं समझता। कि मैं इतना लाउड बोल रहा हूं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के दिन एक आदमी आएगा जिसका कोई गुनाह नहीं होगा, कोई नहीं, नेकियां पहाड़ों के बराबर, और उसके आमाल नामे तोले जाएंगे, अमाल नामे, और उसके लिए नियली जन्नत का फैसला होने वाला, क्योंकि सारे ही अमाल बड़े बड़े अमल, बड़े बड़े अमल, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। तो इतने में अल्लाह तबारक व ताला एक छोटी सी पर्ची, ऐसी छोटी सी पर्ची लेफ्ट साइड में रख देंगे, गुनाह के पान में, गुनाह के पलरे में, तो उसके गुनाह का पलरा जो है वो भारी हो जाएगा, सारी नेकियां बर्बाद हो जाएगी, खत्म। हालांकि कुछ वो भी सोचेगा कि ये क्या चीज है छोटी सी, मेरे इतने बड़े बड़े अमाल है नेकियों के, और एक छोटी सी चीज है इसमें डाल दी अल्लाह पाक ने, और मेरे लिए जहन्नम का फैसला हो गया। तो अल्लाह से पूछेगा, ठीक मैं जहन्नम में तो जा रहा हूं, लेकिन मुझे बता तो दे ये क्या है, ये कौन सा बड़ा इतना अमल है कि जिसकी वजह से मेरे सारी नेकियां बर्बाद, जहन्नम का फैसला। फरमाया तूने दुनिया में जिंदगी में एक मर्तबा तेरी मां के सामने ऊंचा बोला था, ऊंचा जोर से, मारा नहीं, गाली नहीं दी, ऊंचा बोला, जो कि कुरान के खिलाफ किया, उफिल लकुम, तुम मां को उफ तक न कहो, उफ भी ना कहो, ऊंचा बोला, ऊंचा। हम लोग कहते हैं भाई मुफ्ती साहब दुआ करना, पीर साहब दुआ करना, मौलाना साहब दुआ करना, शेखुल हदीस साहब दुआ करना, हम कहते हैं। लेकिन किसी की दुआ अल्लाह कबूल कर ले, नबी करे, किसी के लिए किसी आलिम ने दुआ कर दी, किसी मुफ्ती साहब ने दुआ कर दी, हो सकता है कबूल हो जाए, हो सकता है नबी कबूल हो, दोनों हो सकता है, कोई गारंटी नहीं। लेकिन माँ बाप की दुआ में गारंटी है, माँ बाप की दुआ में गारंटी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे माँ बाप की दुआ तुम्हारे लिए अंबिया की दुआ की तरह है, अंबिया की दुआ, अंबिया की दुआ, नबियों की दुआ, रसूलों की दुआ तुम्हारे माँ बाप की। कोई कोई अगर चे माँ और बाप नमाज न पढ़ते हो, ना फरमानी करते, फिर भी दुआ कबूल हो जाएगी, बद्दुआ भी कबूल हो जाएगी, इसलिए कि माँ बाप की नेकियों की वजह से दुआ नहीं कबूल हो रही, माँ बाप को माँ बाप का दर्जा इसलिए मिला है कि उन्होंने तकलीफें उठाई है, उसकी वजह से, इसलिए नहीं कि वो नमाज पढ़ेगी मेरे लिए दुआ करेगी या बद्दुआ, तो नहीं, माँ बाप है अगर वो नबी, इसीलिए तो एक सहाबिया ने कहा मेरी माँ है शराब पीती है, मुसलमान नहीं है, क्या मैं उसकी, हाँ उसकी खिदमत कर, इसलिए कि उसने तुझे पैदा किया है, तकलीफ उठाई है, अगर तुझे शराब पीती, समझा उसको, समझा न पिए ठीक, और उसकी खिदमत कर। इसलिए माँ बाप की दुआ और बददुआ के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया आसमान पर जाने के लिए कोई दरवाजा नहीं है, कोई दरवाजा नहीं, देयर इज नो डोर एट ऑल। हमारे बच्चे कहां समझते हैं बात, इसीलिए अल्लाह का अर्श हिलता है। तो पूछता है अल्लाह पाक क्यों हिलता, कहा इसकी दुआ माँ बाप की दुआ कबूल कर लो, फरमाया मैंने कबूल कर ली, अर्श का हिलना बंद हो जाता, ये अर्श को हिला देता है। दो चीज बड़ी खतरनाक, एक तो तलाक, अननेसेसरी, लेना या देना, तलाक देना या तलाक लेना, अननेसेसरी, इससे अल्लाह का अर्श हिल जाता है। हाँ अगर मजबूर है तो अलग बात, और नंबर दो माँ बाप की मजलूम की बद्दुआ, ये बड़ी खतरनाक चीज है। कोई इबादत कबूल तो होती नहीं, रिदर रब फी रिजल वालिदी। एक आदमी कई सालों से हज पढ़ता था, हर साल हज के बाद उसको ख्वाब में कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ, तेरा हज कबूल क्यों? कहा तूने तेरे मां को ओवन में डाल के जला दिया था। कल ही परसों मेरे पास एक मैसेज आया, बेटे ने अपने मां और बाप दोनों को कत्ल कर दिया। सो मां बाप को लोग मां बाप समझते नहीं, इसीलिए वो साहबी क्या फरमाते, अल्लाह के रसूल मैंने मां को उठाया और उठाकर चला मैं मीना गया, शहर से आया बगदाद और कूफा से उठा के लाया और मक्का मुकर्रम आया, फिर हज के दिनों में मीना गया, अरफात गया, कितनी गर्मी होती है, फिर मां को उठा के चलना, फिर वहां से मुजदलिफा गया, हम बस में ठग जाते हैं, फिर वहां से फिर तवाफ ज़ियारत के लिए आया, क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? फरमाया तेरी माँ ने जनते वक्त जो आह निकाली, जो तकलीफ हुई, उसका भी अभी हक अदा नहीं हुआ। पूरी जिंदगी तो छोड़, दूध पिलाया 2 साल वो तो अलग, यही काफी है कि माँ ने दूध पिलाया, दूध नहीं पिलाया खून पिलाया, अपना खून पिलाया, अपना खून पिलाया। काश के अब यंगस्टर शुड अंडरस्टैंड the reality, the love of mother and father. बड़ी अजीब चीज है, आज कहते हैं बस अब्बा तुम जाहिल हो, अम्मी तुम जाहिल हो, यू डोंट नो नथिंग, वी नो एवरीथिंग। देखो इन्होंने मौत के घारे में, ये लोग इस वाक्य में क्या है, वो पहला आदमी क्या कह रहा है, बिल्कुल मरने की तैयारी है ना, अगर रोक नहीं आता तो मर जाएंगे लोग, तो गोया के सकरात में है, और क्या दुआ की, अल्लाह मेरे माँ बाप की मैंने खिदमत की है, अगर तुझे पसंद आ गया उस रात का वाकिया जो मैं पूरी रात खड़ा रहा माँ के लिए बाप के लिए दूध लेकर, फिर उठा उठे तो मैंने पिला दिया, अगर मेरा यह अमल पसंद है तो फिर पत्थर हटा रहे, तो वो रोक हटा। सही है से बुखारी शरीफ के, इसलिए कयामत की निशानियों में से एक निशानी यह है कि लोग मां बाप की नाफरमानी करेंगे, औलाद मां बाप की नाफरमानी करेंगे, और दे गोइंग टू डिसओबे द पेरेंट्स, और दोस्तों की खिदमत करेंगे, दोस्तों को घर में आए तो रूम में जाओ, मां चली गई तो कहती कब निकले, बाप चला गया कब निकले, The daughter don't want to come, mother come inside. Because disturb हो रहा है, फोन कर रही किसी से, बात कर रही किसी से, YouTube में बिजी है, WhatsApp में बिजी है, और अगर दोस्त आ गया खुद नीचे बैठेगा उसको बेड पर बिठाएगा, खुद कुर्सी पर बैठेगा उसको सुबह बिठाएगा, और उसको पूछेगा क्या पीना है, चाय पीना है, जूस पीना है, क्या पीना है, और हो रहा है ये हो रहा है, मेरे पास तो बहुत सारे बाकी, ये हो रहा है। मां और बाप को मां बाप नहीं समझा, मां और बाप को गुलाम समझा, इसीलिए बुखारी शरीफ में है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कयामत की निशानियों में से एक निशानी यह है अन तलिदल अम्मतु रब्बतहा, बांदी अपने आका को जनेगी, बांदी कभी आका को नहीं जनती। क्या मतलब इसका, बाज़ मुहद्दिसीन ने लिखा है कि मां को मां औलाद बांदी समझेंगे, और जब वो औलाद बड़ी हो जाएगी तो बिस्तर पर बैठकर बादशाह की तरह अपनी मां को बांदी समझकर काम करवाएंगे, सैंडविच बना, चाय बना, फुना कर, आइन कर दे, फुना कर दे, फुना कर दे, अंतलिदल अमतु रब्बता, ये असल तफसीर है इसकी तफसीरों में से। एक वजह ये हुई कि माँ बाप की खिदमत एक रात इखलास के साथ की है, अल्लाह ने उसको मरने से बचा लिया, आसमान नजर आने लगा, थोड़ी उम्मीदें बन गई कि बच जाएंगे। दूसरा आदमी आगे कह रहे हैं, उसने भी अपना खालिस अमल पेश किया, बहुत खालिस। उसने कहा अल्लाह मेरी चचा की लड़की थी, मैं उससे बहुत मेहनत मोहब्बत करता था जितना एक मर्द एक औरत से, लेकिन मैंने यानी गलत काम के लिए इरादा था, हमने बदल दिया। उसको माल दौलत की जरूरत पड़ी, मैंने वो बदलाए, बस मेरा काम। लेकिन उसने कहा इत्तकिल्ला, अल्लाह से डर। ये चीज मेरे दिल में ऐसी बैठ गई, अल्लाह अकबर, उसकी वजह से मैंने उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया और हट गया, नियली आधा खुल गया। और उसके बाद तीसरे आदमी ने भी एक खालिस नेक अमल के वसीले से अल्लाह से पाया, तो अजीब था, कोई नहीं करता, बहुत कम लोग। मैं मजदूर रखता था, वर्कर्स यूज टू वर्क फॉर मी, और आई यूज टू गिव देम वन फरक राइस, फरक एक नापने का किलो का, दो किलो का, तीन किलो का, ऐसा बर्तन होता है जिसमें करीबन 3-3.5 किलो राइस आ जाते थे, तो तकरीबन 10 किलो जितना उसका वेजेस मेरे पास रह गया था, 10 किलो चावल रह गया, और वो मुझे मेरे लिए काम करता था। एक दिन क्या हुआ, एक दिन उसने दो आदमी का काम किया, मैं उसको मजदूरी देने लगा, तो मैंने उसे कहा तुमने दो आदमी ने दो दिन का काम किया है तो मुझे ज्यादा मजदूरी मिलनी चाहिए, उसने मांगा, तो मैं गुस्से हो गया उस पर, नहीं, बस वो काम छोड़ के चला गया। ऐसा होता है, काम छोड़ के लोग चले जाते हैं, तनख्वाह नहीं देते, तो मैं काम छोड़कर चला गया बस। लेकिन मालिक अमानतदार था, अगरचे गुस्से वाला था, अमानतदार था, कहा ये तो मेरा हक नहीं है 20 किलो, ये तो मजदूर का हक है जो छोड़ के चला गया, ये तो मेरे पास अमानत है, अगर मैं इस राइस को वैसे ही रखूंगा तो ये बिगड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं जब भी। लिहाजा उसने प्लान बनाया, मालिक ने, मास्टर ने, ओनर ने, उसने कहा उस राइस को उसने अपने खेत में उगाया 10 किलो, तो जाहिर बात है जब ये उगे तो बहुत हो गए, मनों में हो गए। अब उसको बेचकर उसने बैल खरीदा, बकरियां खरीदी, ऊंट खरीदा, गाय खरीदी, थोड़ी सी मजदूरी को 10 किलो को खेत में डाला और इतने राइस पक गए, उसको बेच करके अब ऊंट खरीदे, गाय खरीदी, बैल खरीदे, बकरियां खरीदी। एक मुद्दत के बाद वो आया, वो मजदूर, चलो यार अपने जरा मास्टर की मुलाकात कर लेता हूं, दुकान वाले की, शॉपकीपर की। कहा भाई मेरा बाकी अलाओ यार 10 किलो, याद है ना तुम्हें 20 किलो। फरमाया जाओ जाओ जाओ, वहां जमीन पर खड़े हुए सारे जानवर तुम्हारे हैं, वो ऊंट तुम्हारे हैं, वो बकरियां तुम्हारी है, वो गाय तुम्हारे हैं, वो सब कुछ तुम्हारा है, यार मजाक मत कर, क्योंकि वो तो ऐसे बढ़ गए थे ना जानवरों से, मैं तो 10 किलो मांग रहा हूं मेरा जो बाकी है वो, और ये कम मेरे जानवर कैसे आ गए। ये बुखारी शरीफ का हदीस सही है, हदीस ला तस्तहज़ी भी, मजाक मत कर मेरे साथ। मजाक नहीं करता हूं, सही कह रहा हूं। इस तरीके से मैंने तेरे माल को लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, तो उसकी वजह से आज इतना तेरा है, ले जा सब। ये अमानतदारी है। ये क्या है? अमानतदारी। चलो जो गया वो गया, हम क्या करेंगे? सदका ही कर देंगे। और अगर हम मुस्तहिक तो हम ही खा लेंगे। ऐसा ही इंसान का ईमान तोला जाता है, ईमान, ईमान तोला जाता है। हाँ, हमारे यहां अगर कोई आदमी किसी को लाख रुपये कर्ज देता है तो पहले कर्ज लेने वाले से कोई चीज लेते हैं, भाई रख कर जा, मकान या गाड़ी या कुछ गिरवी रख, फिर वो उसको वो मकान आदमी करते, भाई तुम्हें रेंट पर मकान चाहिए तो पहले डिपॉजिट भर, महीने की डिपॉजिट पर, करते कि नहीं करते? हाय हाय, ये चीज है। तो अजीब हालत है, उस मालिक ने ऐसा नहीं किया बल्कि उसको उसका माल लगा दिया, और इतना हो गया, इतना हो गया कि सारा के सारा माल तेरा है, ले जा। वो मजदूर सारा माल ले गया। उस मालिक ने इस खास नेक अमल की वजह से अल्लाह से कहा, ये रॉक हटा दे, हमारी जान बचा ले। मेरी बात समझते हैं? हजरत जी मौलाना इलियास साहब, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तीनों ने किसी ने वालिदा का, वालिदैन के बारे में कहा, किसी ने वो लड़की के बारे में, और किसी ने ये मजदूरी का हक अदा करने के, तो अल्लाह ने दुनिया का रॉक हटा दिया, दुनिया का रॉक हटा के जन्न उसको मरने से बचा लिया। अगर ऐसे नेक आमल करोगे तो अल्लाह इन नेक आमाल के वसीले से जहन्नम को हटा करके तुमको जन्नत में डाल देगा, जहन्नम की आग को हटा देगा। तो सबसे पहले बात यह समझ में आई आज के सबक से कि हर काम इखलास वाला हो। कोई भी अमल है जिस पर आदमी की मगफिरत हो सकती है, कोई भी अमल, देखो एक अमल है कितना कबूल हो गया कि हट गया, ऐसा कोई भी अमल हमारा ऐसा होना चाहिए जो इखलास वाला हो, पुल इखलास हो, किसी के लिए ना हो, सिर्फ अल्लाह के लिए। उससे अल्लाह बड़ी बड़ी मुसीबतें टाल देता है। हम ऐसा करते नहीं, नेक आमाल के वसीले से मांगते नहीं। नेक आमाल के वसीले से मांगना जायज है, ये हदीस बुखारी शरीफ की है। इन्होंने नेक आमाल के वसीले से मांगा। सो कोई भी ऐसी डिफिकल्टी आ जाए तो अल्लाह के सामने दो रकात पढ़कर यूं कहे, अल्लाह जिंदगी में मेरा फुला काम जो मैंने तेरे लिए किया था, अगर तेरे यहां पसंद आ गया तो उसके सदके उसके वसीले मेरा यह काम कर दे, काम हो जाता, काम हो जाता। देख कर, ये तो बुखारी शरीफ में, ये तो बनी इसराइल का वाकया है, इस उम्मत का भी नहीं, इस उम्मत का दर्जा तो बहुत बड़ा है। तो एक काम तो ये होता है कि नेक अमल की बरकत से मुसीबतें टल जाती है। नंबर दो, खालिस अमल की बरकत से, इखलास की वजह से करामतों का जुहूर होता है। कैसी बड़ी करामत हो गई कि इतनी बड़ी चट्टान है, मुंह बंद हो गया गार का, उसको कोई हटा नहीं सकता है। नेक अमल की बरकत से करामत ऐसी जाहिर हुई कि वो चट्टान ऑटोमेटिकली हट गया। ये एक करामत है, उस करामत को जाहिर करने वाली जात अल्लाह की जात है। हाँ, किसी के ताकत में नहीं। किसी नबी के हाथ पर मौजिजे का जाहिर होना, ये भी अल्लाह की तरफ से है। कोई नबी मौजिजा अपनी तरफ से नहीं बता सकता है। ऐसे ही औलिया किराम के हाथों पर करामतों का जाहिर होना, ये औलिया की ताकत नहीं है, वो अल्लाह की ताकत है। इसीलिए हमें अल्लाह के सामने नेक अमल करके अल्लाह ही से मांगना है, तो अल्लाह हमारे हाथों पर भी करामत जाहिर कर देगा। एक मर्तबा एक हिंदू मैन लड़का अपनी मां को लेकर आया कि वो चल नहीं सकती, उठा के लेकर आया। सो मैंने कुल हु अल्लाह वह तीन बार पढ़ी दिल दिल में, और फिर मैंने दिल दिल में दुआ की, अल्लाह ये नॉन मुस्लिम है, इसको कुरान की वैल्यू क्या खबर है, अल्लाह तू इन कुलहू अल्लाह हद ही की पावर और कुदरत इसको बता दे कि इसकी बरकत से उसको शिफा दे दे। अब बिलीव कीजिए, मस्जिद में बैठा हूं, बस मैंने ये दुआ की और उसको वैसे ही दम किया तो वो चलना शुरू हो गई नॉर्मल। इतनी बड़ी करामत के वो मुसलमान भी हो गई, मुसलमान भी हो गई। ये कुरान अल्लाह से मांगता है आदमी दिल से, तो वो अल्लाह जो पहले में था बनी इसराइल में, जो आदम अलैहिस्सलाम से पहले, आज भी आज भी आज भी आज भी कयामत तक वही अल्लाह है। ऐसा तो नहीं है तो उनका अल्लाह कुछ अलग था जिन्होंने कबूल कर लिया, हमारा अल्लाह कबूल नहीं था। अल्लाह तो वही है, हमारा इखलास चाहिए हमें अल्लाह के सामने मुतवज्जे। दिल का बनाने वाला भी अल्लाह है, वो देखता है सिर्फ। क्या कहते हैं अल्लाह, मैं तुम्हारी शहरत से भी ज्यादा करीब हूं, ये सांस लेने की जो नली है ना उससे भी ज्यादा मैं तेरे करीब हूं, मैं तेरी दुआ कबूल करूंगा। तीसरी बात, अपनी जिंदगी को वालिदैन की खिदमत के लिए कुर्बान करना चाहिए। इतनी बड़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने का दर्जा क्या है, सहाबी। क्या बन जाता है आदमी, सहाबी बन जाता है, बन जाता है। और सहाबी के लिए क्या कहा, रज़ियल्लाहु अन्हुम वरदुआन, सहाबा उनके दर्जे को कोई पहुंच नहीं सकता। लेकिन वैसे करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो मौजूद थे बड़ी उम्र के, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनको पता था, वो जाना भी चाहते थे लेकिन बूढ़ी मां बीमार थी ना, उन्होंने मैसेज भेजा कि मैं आना चाहता हूं लेकिन आ नहीं सकता, मेरी मां बूढ़ी है। मेरी मां क्या बूढ़ी है, ये तकाजा है। मुफ्ती तकी साहब लिखते हैं, जिस वक्त जो तकाजा उसको पूरा करो, उसको छोड़कर दूसरा काम मत करो। अभी एकदम मां घर में गिर गई और उसको ऐसे ही छोड़ करके, मैं अभी नमाज पढ़ के आता हूं, मस्जिद आ गया तो उसका क्या होगा, अभी तकाजा है मां को देखने का। जो तकाजा उस सहाबी ने वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं, सिर्फ मैसेज भेजा। अल्लाह के नबी ने कहा लुक आफ्टर योर मॉम, लुक यू नहीं, आ जाओ मैं नबी हूं मुझे देख लो, सारा काम काज छोड़ो, आजकल के पीर साहब क्या कह रहे, छोड़ो मस्जिद में आओ मेरी ज़ियारत करो। और मैं लुक आफ्टर योर मॉम, कितना बड़ा दर्जा मिला। अल्लाह के नबी तो चले गए, जाने से पहले कह गए उमर फुला और फुला साहबा तुम जाना फुला जगह हज के मौसम में, वहां उवैस करनी आएंगे हज पढ़ने के लिए, बकरियां चराती होंगी, उनसे अपने लिए भी और मेरी उम्मत के लिए भी दुआ कराना। ये किसको कह रहे, जिनके बारे में अल्लाह क्या कह रहे, लौकान बादी नबी लकान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी बनने की ताकत रखता है यानी तो उमर है, उनको कह रहे अल्लाह जाना उसके पास अपने लिए भी दुआ कराना और मेरी उम्मत के लिए भी दुआ कराना। जाके तलाश करते और फिर तुम कौन है पूछने वाले मुझे कौन, तो किसी ने कहा तो उमर है, अच्छा अच्छा फिर कहा दुआ करो, तो उन्होंने दुआ की हजरत उमर के लिए। सब सारी दुआ मौजूद है रिवायत हज में। तो हदीस में आता है वालिदैन की रजामंदी अल्लाह की रजामंदी है, रिजर्व फी रिजर्व, कुछ भी हो जाए। चौथी बात इस सबक में क्या है कि असल तकवा इंसान अपने आप को गुनाह पर कुदरत के बावजूद बचाए बचाए। इसलिए फरमा इत्तकिल महारिम तकुन आबदन नास, तुम हराम चीज से बचा लेना तुम सबसे बड़े अल्लाह के इबादत गुजार बंदे और बंदी बन जाओगे। और पांचवी चीज, इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसने हमें हर मुसलमान की खैरखाही और भलाई के लिए भेजा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन अन नसीहा। इसीलिए नबी सासम जब कभी किसी से बैठ करते थे तो उसमें ये बात जरूर कहलवाते कि हम मुसलमान की खैरखाही करने का वादा करते हैं, हर मुसलमान के साथ भलाई का। वादा करते हैं। जरी बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज कायम करने, जकात अदा करने और हर मुसलमान के साथ खैरखाई पर बैत की, सुभान अल्लाह। और उस उन्होंने वो पेश किया, उनका वाक्या नकल किया है कैसे। हजरत जरीर अपने खादिम के साथ एक घोड़ा खरीदने के लिए बाजार गए, बाजार के कोने में सवारियां देखने के लिए खड़े हो गए, ये घोड़ा ये घोड़ा ये घोड़ा ये घोड़ा। एक घोड़ा उनको पसंद आ गया तो अपने खादिम को हुक्म दिया वो घोड़ा खरीद कर लाओ। खादिम ने जाकर उसके मालिक से बातचीत की, कितने का? 300 दिरहम का उस जमाने में। तो उसने इतने में देने से इनकार किया तो खादिम मालिक को लेकर हजरत जरीर के पास गया, भाई हमारे मालिक तो ये है जो खरीदना चाहते हैं। तो मालिक ने हजरत जरीर से फरमाया, उसने सच कहा, 300 का नहीं है, आप जो कीमत तय करें मैं लेने के लिए तैयार, बताओ। तो जरीर ने फरमाया, आपको घोड़ा 300 का नहीं है, ज्यादा का है। कभी किसी दुकान वाले को कहा, नहीं यार ये 10 नहीं 12 ले लो, ये 10 नहीं यार, तुम गरीब लगते हैं मुझे यार, ये तुम लाड़ी पर बेच रहे हो, लगते हैं तुम्हारे पास शाम को इतने पैसे होंगे, ले चलिए 10 की जगह 20 रुपए ले ले। कभी किया? खैर खाई इसको कहते हैं, बाज लोग करते हैं कि भाई तू भी यहां पूरा दिन है, एक लाड़ी पर छोटा सा कोई चीज बेचता है, कितने पैसे आएंगे, कितने प्रॉफिट आएगी, 50 रुपये 100 रुपये, उसमें क्या होगा, ले भाई तू मेरे, मुझे अल्लाह ने दिया है 50 की चीज दे दे और ये 100 ले ले। तो उसके दिल से क्या दुआ निकलेगी, कितनी दुआ। हजरत जरी ने ऐसा ही किया, तेरा घोड़ा 300 का नहीं है, ज्यादा का है। तो वो बराता गया, 400 का नहीं और महंगा है, 500 का नहीं और महंगा है, और मांग, मांगते मांगते उसने 800 दिरहम कहे तो कर ले, डबल दे दिया। फिर उसके बाद उन्होंने अपने खादिम को डांट कर कहा, तुम्हें पता नहीं मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर हर मुसलमान के साथ भलाई करने का करने की बैत की है, मैं चाहता हूं मुसलमान के साथ भलाई कर, ये है। इसीलिए जब कभी किसी से कोई चीज लेते, यार तेरी चीज इतने की नहीं ज्यादा की ले, हर ये थे सहाबा के हर चीज पर अमल करते थे। हम तो इसको मजाक में निकाल देते हैं लेकिन सहाबा यकीनन अमल करते हैं। इसलिए अल्लाह से दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अब ये और भी इसमें बातें हैं इंशाल्लाह, फिर आगे बाब तौबा नकल करते इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह, इंशाल्लाह उसको बयान करेंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत की तौफीक नसीब फरमाए, नेक आमाल की तौफीक नसीब फरमाए। या अरहमुर राहिमीन, या ज़ल जलाली वल इकराम, या हन्नान या मन्नान, या बदीअ अस्समावाति वल अर्ध, या बदीअ अस्समावाति वल अर्ध। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، يا الله ہم پر رحم فرما، يا الله ہم پر کرم فرما، يا الله ہماری پریشانی کو دور فرما، اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما، يا الله دور دور سے لوگ آئے سب کی مغفرت فرما، سب پر رحم فرما، اے اللہ سب کے کاروبار میں سب کے گھروں میں برکت نصیب فرما، آپس میں محبت مودت نصیب فرما، یا اللہ نمازوں میں اے اللہ اخلاص نصیب فرما، عبادتوں میں اخلاص نصیب فرما، خشوع اور خضوع نصیب فرما، اے اللہ 5 وقت کی نماز ہمیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ مرتے دم تک ایمان پر اعمال پر اے اللہ تو قائم دائم رکھنا، جب موت آئے ایمان پر موت دینا، جب موت آئے ایمان کی موت دینا، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے رحم و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو بھی بیماروں نے شفا عطا فرمائے، اس مجمع میں جو بھی بیمار نے شفا عطا فرمائے، ہماری مائیں اور بہنیں ہمارے بھائی جو بھی بیمار ہو ان کے گھر میں، یا اللہ ہاسپٹل میں جہاں کہیں جو بیمار ہو سب کو شفا عطا فرما، ہماری اولادوں کو نیک بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خیر کی دعائیں مانگی اس نے ہمارا حصہ نصیب فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے اس سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد والی وسلم اجمعین برحمتہ